Early in morning.
ছিল কি দুপুর বেলায় এখানে খেয়ে প্রসাদ
দুজনেরই তিনজনের তিনজন
ইংল্যান্ড কোথায় নিয়ে গেল কি হাওয়া কোথা থেকে আসছিল ইধর সে উধর যায়গা তো হওয়া কিন্তু এক তরফ সে নেই ভগবতাম হম লোক চল রা থা দশ মূল আর সাথ সাথ মে ভি চল রা দশ মূল মে হম লোক কা হো গিয়া থা বিবিনাশ হো গিয়া আর জড় আর চেতন সব কুছ ভগবান সে ভেদ আর অভেদ ক্যোকি সভি ভগবান কি শক্তি হ্যাঁ
আর শক্তি সে উৎপন্ন হুয়ে হ্যাঁ আর শক্তি আর শক্তিমান জব দোনো এক হি হ্যায় তো শক্তি সে ভি পরিণত যে জীব আর জগত ইনসে ভি ভগবান কা ভেদ আর অভেদ
ভেদ ভি হ্যায় शास्त्रों में बहुत से उदाहरण इसके शब्द दिए गए गीता में भी श्लोक में बतलाया गया न तेसु तेसु न तेसु अहम मैं सब जगत में हूँ और जगत हम में है तो भी मैं उनमें नहीं हूँ न वो हम में है
नाम जगत है उसी जगत चैतन्य चैतन्य
इसलिए गीता में भी ऐसे दिया कहीं कहीं पर ये जगत भगवान मैं ही हूँ श्रीमद् भागवत में दिया गया प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में ये जगत मैं हूँ हमसे दूसरा कुछ इतर जगत नहीं है किंतु मैं जगत नहीं हूँ जगत में ये दोनों बातें एक साथ नहीं होंगी किंतु भगवान में ये दोनों बातें एक साथ होती हैं एक साथ में हो सकती हैं भगवान इस जगत में मैं किसी का पुत्र नहीं हूँ या तो यह ठीक है और नहीं तो मैं किसी का पुत्र हूँ दोनों में कोई एक ही हो सकता है वहाँ दोनों संभव है कृष्ण किसी के भी पुत्र नहीं है सबके आदि हैं स्वयं अनादि हैं तो भी यशोदा मैया के नित्य पुत्र हैं वो निराकार होते हुए भी सबसे सुंदर कृष्ण रूपी आकार वो किसी को भी न मारते हैं न कुछ करते हैं किंतु भक्तों के विरोधियों को वो दमन करने के लिए जगत में आते हैं इस जगत में उनका कोई भी कार्य नहीं है किंतु लीला संपादन करने के लिए उनको कभी भूख प्यास वृद्ध जरा ये आठ जो विकार हैं उनको कभी नहीं होते किंतु फिर भी यशोदा के प्रेम से उनको भूख भी लगती है तरह तरह की कामनाएं होती हैं और सब रसों का आस्वादन करते हैं ये सब अचिंत्य भेदाभेद किसी भी शक्ति किसी भी चीज की शक्ति उस वस्तु से अचिंत्य होती है जैसे विष खाने से आदमी क्यों मरे, क्यों मरता है? आज तक कोई साइंटिस्ट इसको बाहर नहीं कर सकता। उसमें ये क्यों शक्ति है, कहाँ से आ गई जो आदमी खाएगा और मर जाएगा, कैसे आ गई, ये कोई विश्लेषण। पानी पीने से ही क्यों प्यास बुझती है? पानी गर्म हो या ठंडा, खूब गर्म खौलते हुए और आग पर डाल दो तो भी बुझा देगी आग, और ठंडे रहे तो भी बुझाएगी, क्यों? क्यों, इसका कोई भी उत्तर किसी के पास नहीं। जीव क्यों चेतन होता हुआ भी संसार में आसक्त हो गया? माया एक दुर्बल चीज, जड़ वस्तु, और उसको आसक्त कर लिया, क्यों? लड़का एक चेतन है ना, छोटा सा बच्चा, एक लकड़ी की या एक रुई की कोई चीज मूर्ति बनाकर उसको खेलने के लिए दे दो और वो हाथ में लेकर ले लेगा तो उसे कोई भी लेना चाहेगा नहीं देगा, रोएगा, उससे उसकी आसक्ति जम जाती है और अपने उसका प्रिय मान करके उसी के साथ में खेलने में तन्मय हो जाता, क्यों? ऐसे ही जीव चेतन होकर के भी अचेतन माया के वशीभूत हो पड़ता है, क्यों? उसमें क्यों आसक्त होता है? जड़, ये शरीर जड़ है, शरीर जड़ है, सभी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये शरीर जड़, और इसमें का ऊपर का चमड़ा हटा दिया जाइए थोड़ा सा, और नहीं तो यहाँ का ही थोड़ा सा उठा दिया जाए चमड़ा, तो क्या होगा? कोई किसी से प्यार करेगा शरीर से? केवल चमड़ी हटा दिया जाए, जानबूझ करके इसके अंदर में सड़ा गला, पैखाना, टट्टी, ये सब है, तो अभी क्यों संसार में आदमी पीते करता है, क्या कारण, क्या कारण? ये तो शरीर जड़ है ना, सब जानते, तो भी जड़ तड़ उस समय भूल जाते हैं, बस परस्पर परस्पर के प्रति। केवल मनुष्य ही नहीं, जितने संसार के प्राणी हैं सबको माया ने इसी आसक्ति से बांध रखा है परस्पर, कोई टस से मस नहीं जा सकता। हम सोचते हैं कि स्वतंत्र हैं, रस्सी तो देखी जाती है उसे बंध, और ये बंधन ऐसा है, इतना दृढ़ है, कहीं जाओ किंतु इस आसक्ति तुम्हें बांधे रहेगी, थोड़ी सी असावधानी हो जाए बस लेकर के डुबा देगी रसा पर। ये क्यों? ये भगवान की अचिंत शक्ति। अचिंत माने क्या? वो कहाँ गया सुधन्य? अचिंत माने क्या मतलब? अचिंत माने किसको कहा? हेलो, तो तुम अचिंत माने? मतलब तुमको बोला पंडित महाशय को आगे बैठने के लिए, तो फिर तू पीछे बैठे। बोलो, बोलो परमानंद, अचिंत क्यों? बोले पंडित जी,
कर लेता
है जिस परमार्थ वस्तु को दो शब्द में बोलो, मैंने एक सेंटेंस में बोलो, एक वाक्य से ये बच्चे लोगों ने
परमार्थ वस्तु को कभी भी अपनी शारीरिक मानसिक वाचसिक कोई भी चेष्टा के द्वारा एवं चिंता भावना के द्वारा प्राप्त किया नहीं जा सकता है। यदि महान पुरुष लोग कृपा कर दे तब इसका अनुभूति हो सकता है। इसलिए जीव साधारण अपनी चिंताधारा से कभी भी व्यक्त एवं अनुभूति नहीं कर सकते।
तुम बोलो
जिंत खुलुजे भाव काम करके नुजे प्राकृतिक परिवर्तन अजिंत संरक्षण बुझे प्राकृतिक विद्या बुद्धि विचारधारा जाके जहाँ बोधगम मन अनुभवी पुरुष एवं जरा साक्षात दर्शन करेछें एरू जे संत महात्मा जरा शास्त्र एवं गुरु परम्परा जे वाक्य आमादेर काछे उद्घाटन करेछें ताहाई अचिंत न चिंत अचिंत अचिंत खुलिये भावा नतां स्तर्किन जजये प्रकृति भाव परम जच्च तत् अचिंत्यस्य अचिंत्यस्य लक्षणम् जड़ीय भावना के अतीत किंतु वेद बुद्धि गम्य इसलिए उनको अचिंत कहा गया।
तुम बोल सकती है, बोलने की चेष्टा करो, तुम लोग बोलो क्या बोला वही बोलो। यही तो होगी ठीक। अचिंत्य माने होता है जो स्वतंत्र बुद्धि के द्वारा विद्या बुद्धि आदि के द्वारा वो गम्य नहीं है, किंतु हम जानते कैसे हैं, जाना ही नहीं जा सकता। अचिंत का मतलब ये नहीं है ये जाना ही नहीं जाएगा। न चिंत्य इसका अर्थ ये नहीं, चिंत्य वो जाना जा सकता है। कैसे? गुरु परंपरा के माध्यम से अथवा गुरु परंपरा प्राप्त जो शास्त्र है उनके द्वारा, अन्याय के द्वारा अथवा उन महापुरुषों के द्वारा। महापुरुष मैंने ये गुरु परंपरा में जो आचार्य लोग आए हैं उनकी वेद बुद्धि द्वारा गम्य अथवा गुरु परंपरा के द्वारा गम्य हो तो जाना जाए, अन्यथा नहीं, इसलिए अचिंत कहा गया। अब इसके बाद भक्ति ही एकमात्र अभिधेय है। अभिधेय क्या है? भक्ति ही एकमात्र अभिधेय। भक्ति के संबंध में जानने के लिए कैसे जानी जाएगी? रूप गोस्वामी जी महाप्रभु जी के अनुगत होकर के ये शिक्षा देते हैं। भक्ति किसको कहते हैं? बहुत शास्त्र में बहुत प्रकार का बतलाया गया, बहुत प्रकार से बतलाया गया। परानुरक्ति हरीश्वरे, भगवान के प्रति परानुरक्ति उसको कहते हैं, अथवा लौकिकी वैदिकी वापि जाक्रिया क्रियते मुने हरि सेवानुकूल्य सा कार्या भक्ति मिच्छे। वही भक्ति है जो लौकिकी वैदिकी जो भी क्रिया हो भगवान के उद्देश्य से की जाए तो उसको भक्ति कहते हैं। श्रीमद्भागवत में बतलाया गया क्या है, बोलिए तो श्लोक श्रीमद्भागवत का भक्ति का श्लोक। नहीं दूसरा लक्षणम भक्ति योगस्य, बोलो लक्षणम भक्ति योगस्य क्या?
लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हि उदायतम अहितुक कपिते जाभक्ति पुरुषत्वमे,
ये भागवत में दिया। और इसी के बाद में वो बतलाया गया तो भक्ति योग का लक्षण क्या है, ये भागवत का विचार। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहितम, निर्गुणस्य माने अन्नाभिलाष रहित और ज्ञान कर्म आदि रहित, ये होगा निर्गुणस्य। उदाहितम अहेतुक अव्यवहिता या भक्ति भगवान के प्रति अनुकूल रूप में समस्त इंद्रियों की जो चेष्टाएं हैं, और उसमें पहले जो बतलाया निर्गुणस्य वो ऊपर का लक्षण, ऐसे यदि हो तो उसको भक्ति का। पंचरात्र में क्या बतलाया गया, लौकिक वैदिक वाली, और भागवत में ये। अब ये सब को लेकर के क्रोड़ीभूत करते हुए महाप्रभु जी के आदेश से भक्ति के सामने सिंधु में भक्ति का लक्षण दिया, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात् जनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम वो भी। तो सबसे भक्ति के संबंध में जितने परिभाषाएं हैं उन सब भाषाओं को लेते हुए भावों को लेकर के भक्ति रसामी सिंधु ने सर्वथा सबसे उपयुक्त परिभाषाएं उन्होंने दी। नाम के संबंध में उन्होंने दी, भक्ति के संबंध में दी, सब विषय में एक एक परिभाषा उन्होंने, और वही परिभाषाएं मान्य हैं। अब यह भक्ति उत्तमा भक्ति जो है इसके संबंध में तो मैंने बहुत बतलाया है, यह होगी कैसे? अनुशीलन कृष्णानुशीलन करना है, और ज्ञान कर्म को छोड़कर अन्नाभिलाषिता को छोड़कर समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को रुचने वाली तथा अनुकूल रूप में होने वाली समस्त वृत्तियों को, चाहे शारीरिक वृत्तियां हों चाहे भावात्मक वृत्तियां हों, ये सब को कहते हैं उत्तमा भक्ति। किंतु ये वृत्ति मन की कोई भावना है या शरीर की कोई वृत्ति है, न मन की वृत्ति है न किस चीज की वृत्ति है, ये जो वृत्ति सेवा की है ये है कहाँ की वृत्ति? ये कृष्ण के नित्य परिकरों में जो संबित और ह्लादिनी की मिली हुई सेवनमयी आनंदमयी वृत्ति है उस ये है। यदि कोई यहाँ पर उसके लिए अपने इंद्रियों से साधन करता है, अपने इंद्रियों से, इंद्रियों माने यहाँ मन इत्यादि भी आते, अपने ये कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया और मन सबके द्वारा अपनी समस्त वृत्तियों को लगाता है तो ये साधन भक्ति कहलाए। ये साधन भक्ति भी दो प्रकार की, एक वैधि और एक ये वृत्ति जो है वो सच्चिदानंदमयी वृत्ति है। मैं भगवान को एक पुष्प उनके चरणों में दूंगा, ना क्यों दोगे? अपने किसी प्रिय व्यक्ति को दो उसको प्रसन्न करने के लिए, यहां तक तो मन की वृत्ति हुई, किंतु मैं एक पुष्प भगवान राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित करूंगा, क्यों? ये वृत्ति तुमको तुम्हारी अपने मन से आई ना कहीं से आई? सुना है शास्त्रों में और वैष्णवों के संतों के मुख से, यदि कोई एक पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या पे यदि दे, संसार के समस्त क्लेश दूर हो जाते हैं और उनके हृदय में भगवान की भक्ति आती है, प्रेम होता है और संसार के क्लेश। अच्छा ये जो बात है ये जगत की किसी कोई बात है ना कहाँ की बात है? तो वो किसी प्रकार से यहाँ आई और उसको सुना तब ये प्रवृत्ति उसमें हो, इसलिए ये वृत्ति तो चिन्मयी है, किंतु जब हम अपने इंद्रियों से और अपने मन से इस चीज को सुन करके सोच करके देते हैं तो ये व्यवहारिकी हो करके, माने इंद्रियों के द्वारा हो करके, ये हमारी इंद्रियों के वृत्ति के अनुसार में होता है ने? तब इसको वैधि साधन भक्ति कहते हैं। अभी ये चिदानंदमय वृत्ति अभी है तो अंतर से, किंतु साफ नहीं है, क्यों? हमने सोचा जे कष्ट निवारण हो जाएगा ना, कष्ट निवारण हो जाएगा और विपत्तियां सब दूर हो जाएंगी और भगवान की हमारे ऊपर कृपा होगी तो हमारी रिद्धि सिद्धि सब कुछ। ये वृत्ति हमारी अशुद्ध है, इसलिए यह भी भैतिक भक्ति के अंतर्गत में है। यही वृत्ति जब संशोधित हो जाएगी एकदम शुद्ध अवस्था, तो जीवात्मा के द्वारा वो वृत्ति भगवान के विशेष चरणों में लग करके शुद्ध प्रेम के रूप में यह हो जाएगी। किंतु जब तक नहीं होती है तब तक ये कुछ मलिन वृत्ति अभी है आत्मा के ऊपर में, वो सच्चिदानंद वृत्ति के ऊपर में ये सब कवरिंग है। इसलिए सबसे पहला जो भक्ति का अंग बतलाया गया, सबसे पहला क्या बतलाया गया, सबसे पहला भक्ति का अंग गुरु पदास बतलाया गया
साधु संघ।
तो साधु संघ में तो ये जानेगा, साधु संघ तो ही है, किंतु जब भक्ति में, जब अंग के पालन करने में जब लगेगा ना, तब सबसे पहला भक्ति का अंग यही उसको करना
पड़ेगा।
वो सुन रहा है, ये सब सुन करके बुद्धि हुई जैसे हमको ऐसा करना है, हमको भगवान की भक्ति करना है, नहीं तो हमारा किसी प्रकार से कल्याण नहीं हो सकता, असंभव है, ये सब सुना शास्त्र में, उपाख्यान सुना। उपाख्यान कहना शास्त्र का तात्पर्य नहीं है, उसके माध्यम से जो शिक्षाएं उसमें है वो प्रधान है। कथाओं के द्वारा तो होता ही है, वो होता ही है, किंतु देखो प्रहलाद महाराज जी को के खान में देखेंगे, प्रहलाद महाराज जी की यह वृत्ति गुरु जी की कृपा से हुई, और डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट माता के गर्भ में हैं और उनको ये सब उपदेश दिए, और जन्मते ही कैसे हो, जन्मने के बाद में नारद जी से उनकी भेंट नहीं हुई है, कोई दीक्षा मंत्र भी नहीं दिया, इसीलिए तो गुरु जी और वो पूछता है हिरण्यकशिपु तुमको किसने शिक्षा दी, तुमको बुद्धि कहाँ से मिली। तो उन्होंने कहा जैसे ये किसी गृह गुरु के द्वारा चर्वित जो चर्वन करते हैं ना, और विषयों में जो फंसे हुए हैं वो खुद ही उनका कल्याण है तो दूसरों का कल्याण करेंगे, इसलिए तथाकथित गुरु से ये सब चीजें नहीं होती, हमारा सिखलाने वाला नहीं, किंतु कैसे होता है, जो महात्मा लोग हैं महियसंग पाद रजोभिषेक के द्वारा, तत् जो महान व्यक्ति हैं भक्त जो है उनके चरण कमलों की धूलि से अभिषेक ग्रहण करने पर ही ऐसी बुद्धि होती है। ये स्पष्ट नहीं बतलाया, उन्होंने कहा तेरा तो गुरु नहीं और हमारा तो गुरु ही है, तो हमारे गुरु बेकार के हो गए। तो उन्होंने कहा जैसे वो चर्वित चर्वणानम, मैं तो यही नहीं कहता जैसे आपके गुरु है, किंतु जिसमें ये लक्षण हो, चर्वित चर्वण कर रहे हैं विषयों का, उनके द्वारा बतलाने से ऐसी बुद्धि नहीं, वो कैसे उनकी दशा होगी, अंधे यथाई उपनंद, वो जैसे कोई अंधा अंधे को गोदी में लेकर कंधे पर चढ़ाकर या उसकी लठिया पड़ करके एक अंधा एक दूसरे को ले जा रहा है कहीं, और कहीं गड्ढा या दोनों गिर करके उसमें डूब करके मर गए, ऐसे ही दोनों डूब करके मरेंगे, शिष्य और चेला दोनों ही, गुरु और चेला दोनों ही मरेंगे, उनसे कोई भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए महियसंग पादर जो भी सिखम, महियसा माने भगवान को जानने वाले अनुभव करने वाले जो गुरु हैं, ऐसे वैष्णव यदि मिल जाएं तो उनके चरणों की रज से अभिषिक्त होने पर ऐसा हो सकता है, तब भगवान को ही अपनी स्वार्थ एकमात्र देखेंगे, स्वार्थ गतिं हि विष्णु, वो अपने स्वार्थ को संसारिक और ये सब नहीं देखते, वो क्या देखते हैं विष्णु का किस कार्य में स्वार्थ है, उनको प्रसन्नता है तो उसके लिए सब करेंगे। उन्होंने पूछा जी तुम ऐसे महान पुरुषों के द्वारा चरण के द्वारा अभिषिक्त तो हुआ, कब हुआ, किसने किया करा, हम उसको देखेंगे, पहले तुम देख लो, देखेंगे कहाँ से। अच्छे प्रहलाद महाराज जी ऐसे महान भावों के चरण रज के द्वारा कब अभिषेक उन्होंने किया, कब किया बताओ,
जब मातृगर्भ में थे
तो चरण की धूलि उन कहां से रगड़ लिया,
उनका विचारधारा तो सुना,
जैसे हम लेते हैं अभी किसी को वैष्णव लोग नहीं देते हैं। हमने देखा है दो एक आदमियों को यहाँ, एक भग रहे हैं और पीछे से एक लपट रहे हैं और उनको गिरा दिया और उनके चरण की धूलि जबरदस्ती लगा खदेड़ा खदेड़ी चलती है मानो एकदम चरण की धूलि ले लिया अच्छा चरण की धूलि क्या चीज है ये धूलि क्या कैसे सेवन हो कैसे हो, संग तो करेंगे नहीं बात तो मानेंगे नहीं, चरण की धूलि जबरदस्ती ले दिया, वो भी भाग रहे हैं बेचारे नहीं देंगे और ये भी छोड़ेगा सस्ती चीज है ना, मनोरंजन भी हो गया चरण की धूलि भी मिल गई, दोनों बातें हो गई चरण की धूलि तो लेना नहीं था, थोड़ा सा मजा लूटना था तो हो गया। ऐसे नहीं, संत पुरुषों उनकी वाणी के माध्यम से उनकी चरण रजों को से अभिषिक्त हुआ है, जो कहते हैं वही करेंगे और अंदर दिल से करेंगे, प्योर हार्ट से। प्रहलाद महाराज जी, हमारा तो हुआ कि नहीं हुआ आप कैसे समझेंगे, आप तो समझेंगे नहीं, हमारा तो हुआ। प्रहलाद महाराज जी का नारद जी के द्वारा ये सब हुआ, इसलिए कहते हैं आदौ गुरु पदाश्रयम्। सबसे पहले इस राज्य में ये कौन कहता है, साधु संत लोग बतलाएंगे, शास्त्र बतलाएंगे। दो ही उपाय हैं, साधु संत हैं, भगवान हैं, शास्त्र, तीनों ते करिया ऐक्य, आर ना करी है मने आशा। साधु गुरु शास्त्र तीनों ते करिया ऐक्य, साधु गुरु और शास्त्र, इन तीनों के बात जहाँ पर एक मिल करके होता है उसको लिख दीजिए। शास्त्र को अपने मत समझो, गुरु और वैष्णव के माध्यम से समझो, और गुरु और शास्त्र को समझो कैसे, शास्त्र के माध्यम से समझो गुरु और वैष्णव को, उनके सब लक्षण इनमें हो, नहीं तो तुम समझ नहीं सकेगा। इसलिए शास्त्र जैसा कहते हैं 26 गुण दिया है, कहीं कहीं कुछ गुण दिया है, गुरु का लक्षण दिया शास्त्र में, प्रपद्येत जिज्ञासे उत्तमं शब्दे परे च निष्णात, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म में, परब्रह्म की अनुभूति उनके हृदय में हो, और शास्त्रों में पारंगत उनकी बुद्धि में, तब तो हो, ये गुरु का लक्षण दिया। अब ऐसा खोजो और देखो, जैसे शास्त्रों से उनकी बातें मिलती हैं, सब उपदेश वैष्णव से मिलती हैं, और वैष्णव में भी प्रधान है वो गुरु है। इस तरह से तीनों को लेकर के हम चले, ये तीनों मिलकर के कहते हैं, ये पहले आदौ गुरु पदाश्रय, सबसे पहले इस परमार्थ में जाने के लिए गुरु पदाश्रय, दूसरा विषम है ना गुरु से, विषम पूर्वक गुरु जी की से, तीसरा सब शास्त्रों की शिक्षा उनसे ग्रहण करना, सद्धर्म शिक्षा एवं परीक्षा, पूछेंगे सद्धर्म क्या है और शिक्षा करेंगे सद्धर्म। इसलिए शिक्षा दीक्षा दो गुरु कर दिया, एक कौन मन में चैत्य गुरु कर दिया, चैत्य गुरु के प्रेरणा से ये सब होगा, चैत्य गुरु स्वयं सिखी पुच्छधारी कृष्ण है, नारायण के भक्तों में नारायण है, किसी के हृदय में कोई है, परमात्मा के रूप में सब में है, किंतु विशेष विशेष भक्तों में विशेष विशेष भगवान के गुरु उनके शिक्षा गुरु होते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी शिक्षा गुरु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण और सब शास्त्र भक्ति विनोद ठाकुर तक जितने आचार्य हैं शिक्षा गुरु हैं, इसलिए इन शिक्षा गुरु के भी पद को साधारण मत समझना। इसलिए इन सब गुरुओं के वचनों में श्रद्धा लेकर के तब हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक वैसा ही आचरण। तब फिर कोई काम यदि भक्ति करेंगे और उच्छृंखल होकर के करेंगे, एकांतिक भी भक्ति करते हैं किंतु उत्पात रेव, एकांतिक भक्ति भी बिना वैष्णव और गुरु के अनुगत्य में हम यदि करते हैं तो एकांतिक भक्ति भी जैसे कर्ण, जरासंध, एकलव्य भी, और वो राजा थे पांडवों के मामा
शल्य,
शल्य ना एकांतिक ये थे ना, ये हम सदाचार और हमारे पास जो आ गया हमारा भगिना हो कि हमारे भगना का कोई भाई हो, सौतेला भाई, दुर्योधन सौतेला भाई ना उनका, हमारे पास जो आ गया बस उसके यहाँ हम चले जाएंगे युद्ध करने के, भले ही अपने भांजे के साथ में युद्ध करना, ये एकांतिक भक्ति है। इन्हें ये साधारण रूप में दिख पड़ता है जी अच्छी बात है, किंतु भक्ति का विरोधी भी हो सकता है। कृष्ण देखिए कैसी चालाकी से बहाना बना करके पांडवों का पक्ष ले लिया, अर्जुन और दुर्योधन दोनों, दुर्योधन ने देखा जी हमारे साथ भी दो नाते हैं और उनके साथ भी नाते हैं, अर्जुन उनका फुफावत भाई है, उनके पिसी का लड़का, कृष्ण ने हमारी बुआ जी का लड़का है अर्जुन आया है, और सुभद्रा के वो पति हैं दो नाते, और वो अपनी लड़की का
कृष्ण के लड़के के साथ
शादी किया तो इसलिए समधि हुए, वो परस्पर समधि, और बुआ जी तो है ही है, बुआ जी के ये भी लड़का है क्योंकि गंधारी और ये दोनों एक साथ मां के रूप में, इसलिए वो भी गया। कृष्ण सो रहे हैं तो ये महाराजा धीराज अपने को समझ करके बैठ गया सिर के तरफ में सिरहाने, और अर्जुन बैठ गए पायदानी की तरफ में, खाट की तरफ, पैर की रखने की तरफ, सो रहे हैं कृष्ण, दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुर्योधन आगे आया है, पांडव पीछे, अर्जुन पीछे गए, इसलिए वो पहले उधर बैठा ही है इधर। कृष्ण थोड़ी देर के बाद में देखा ये दोनों जब आ गए उनको नींद कहाँ, आंख बंद करके प्रतीक्षा कर रहे हैं, अर्जुन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, जब अर्जुन तो आ तो जाए, जब अर्जुन आ गए थोड़ी देर के बाद में उठ करके झट बैठ गए, अर्जुन तुम कब आया, अभी आया, कैसे आया, मैं पांडवों और कौरवों में युद्ध होने वाला है इसलिए आपके पास में अपने पक्ष में होने के लिए मैं निमंत्रण देने आया। इतने में वो कहता है अरे प्रभु मैं आप इनसे पहले आया, तो कृष्ण ने ऐसे फिर करके देखा कि ये महाराज जी वो दुर्योधन जी हैं, ये आप आए आगे, हाँ मैं आगे, तो पहले आपका ही
मांगने का हक है
इसलिए आप क्या चाहते हैं, आप हमारे तरफ से लड़िए। उन्होंने कहा जी देखो एक बात, वो जानते थे कि स्थूल बुद्धि का ये है ना, स्थूल बुद्धि का, इसलिए उन्होंने प्रस्ताव रखा हमारी नारायणी सेना एक तरफ और उसके सेनापति इत्यादि सब जितने वीर हैं अपने अस्त्र शस्त्र के सहित समस्त नारायणी सेना एक तरफ रहेगी और दूसरी तरफ मैं रहूंगा किंतु कभी भी कोई अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा, निहत्था रहूंगा। अब तुम दोनों में से किसी एक को ले लो। उसने विचार किया बहुत आगे तक, भविष्यत विचार किया, ये तो लड़ेंगे नहीं, निहत्थे रहेंगे, और नारायणी सेना बड़ी बलवान है, उसमें बड़े बड़े वीर हैं, कितने अक्षौणी वीर हैं, तो क्यों नहीं उनको ले लिया जाए, ये बेकार के इनको लेकर के इनको भी खाना पीना देना पड़ेगा और सेवा करना पड़ेगा, इसलिए इनकी जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा जैसे अच्छा प्रभु जब ऐसे ही बात है आप लड़ेंगे ही नहीं तो आप न्यूट्रल ही रहेंगे तो नारायणी सेना ही हमको दे, बहुत उनको विदा कर दिया, वो संतुष्ट होकर के चले गए। अर्जुन ने कहा जे प्रभु यदि आपको मांग लिया होता और आप उसके तक तो मैं तो भी यहीं पर मर जाता, मैं तो बचता नहीं, मैं तो चाहता हूँ उन्होंने कहा जी मुझे लेकर के क्या करेगा, नारायण सेना ले लेता तुम भी। अजय नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप हमारे मन रथ के ऊपर मनोरथ पर बैठकर हमें संचालित कीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा, मुझे और किसी चीज की जरूरत, मुझको न राज्य की चिंता है न विजय की चिंता है न कुछ की, बस आप हमारे मनोरथ पर बैठे रहिए और हमारा सारथी का काम कीजिए, हमारी बुद्धि अपने हमारे बस में नहीं है, और बस हमारी बुद्धि को आप कंट्रोल करके चलाएं। इसमें घोड़े हैं ना, इंद्रिय सब बड़े तेज घोड़े हैं, किसी की बात आज तक नहीं माना, बस इन्हीं को आप बस प्रसन्न होकर उनके तरफ में चलो। इसलिए कृष्ण को अर्जुन ने कहा आप ही मेरे गुरु हैं, आप जैसा कहेंगे बस वैसा ही। इसलिए भक्ति राज्य में ये हमारे घोड़े हैं, इंद्रिय सब किसी के बस में नहीं आने वाले, एक घोड़ा जाता है लंका और एक जाएगा ब्रिटेन, एक जाएगा रशिया, एक जाएगा कहीं, एक जाएगा समुद्र में, एक जाएगा पहाड़ पर, कोई ठीक नहीं मन का, इसको कंट्रोल कौन कर सकता है, यदि गुरुजी के हाथों में ये बागडोर दे दी जाए, किंतु बागडोर दे नहीं सकते, देना बड़ा भारी कठिन। अभी रशिया के प्रेसिडेंट जो थे उन्होंने बागडोर तो सहजी बिना युद्ध का और ये सब का सब थमा दिया और सब लोगों को अलग अलग प्रेसिडेंटों को वो सब अधिकार दे दिए, किंतु हम लोग एक घर के एक सूची अग्र भी कोई किसी को हम लोग नहीं देंगे बिना युद्ध के, कुछ नहीं दे सकते। इसलिए यदि हम कल्याण चाहते हैं सबसे पहले भक्ति के 64 अंगों में या लाख अंगों में सबसे पहले गुरु और उनकी सेवा, संतुष्ट होकर के जो उपदेश देंगे शास्त्र शिक्षा देंगे उस पर चलेंगे, ये सबसे पहले होनी चाहिए, ये परमार्थ में तब हम प्रवेश करें, क्योंकि अपनी बुद्धि वृत्तियों का और सब इंद्रियों का संचालन का जब भी गुरु जी के हाथ में नहीं देंगे, अपने आप जब तक चलाएंगे ना, हम लोग सब अपने आप चला रहे हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो अपने मन की बागडोर बिना शर्त ही उनको दे दी है, ऐसे लोग तो सहज ही भव सागर को पा करके भक्ति को प्राप्त हो गए, और जो लोग बागडोर अपने हाथ में रहते हैं कहने के लिए तो कह देते हैं आत्मसमर्पण किया, किंतु ऐसा नहीं चलते, उनको बहुत मुश्किल है भक्ति, इसलिए एकांतिक भक्ति होने पर भी उत्पात रेव केवलम, उत्पात हो जाता है, कोई इधर चले जाते हैं कोई इधर चले जाते हैं कोई इधर चले जाते हैं, इसलिए इसके संबंध में आप लोग अगले दिन भक्ति किसको कहते हैं, उसके अंग क्या हैं, कैसे कैसे भक्ति होती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, और इस सब के विचार थोड़ा थोड़ा आप लोग देख करके आएंगे। विशेष करके यदि कल्याण चाहते हों तो जैव धर्म को अपना गुरु बनाइए, जैव धर्म, और अच्छी तेज से पढ़िए, कैसे सुंदर रूप में जो जो भी प्रश्न उठ सकते हैं वो सब उन्होंने उसमें दिए और डायलॉग फॉर्म में दिए, वार्तालाप के फॉर्म सहज में उसको हम समझ सकते हैं, यदि भक्ति वृत्ति में चले आप लोग उसको देख करके आएंगे तो फिर इसके समझ में आप बोलेंगे। अच्छा, कल हमने नंदा की मकुरुद ब्रह्मण से और ये वो महोदय जसोदा व महाभागा पपौ जस्यास्तनम इसकी व्याख्या हमने की, पूरा हो गया था। इसमें मैं बताया था यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी को ब्रह्म पर ब्रह्म की मूर्ति विग्रह का ये सिद्धांत विरोध नहीं है, पहले कल बताया भक्त भगवान और विषय भगवान आश्रय भगवान, गुरु या ऐसा उपदेशक शिक्षा गुरु जैसा ये, इनको शिक्षा ही गुरु लो, किनको, सुखदेव गोस्वामी को, परीक्षित महाराज जी शिक्षा ही गुरु तो हैं, संपूर्ण से आत्मसमर्पण किए हैं और जैसा कहा वैसा ही उन्होंने किया, तो इसलिए उनको कह रहे हैं ब्रह्मण, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं उनको परम ब्रह्म का मूर्त विग्रह। जसोदा महाभागा पपु जसोदा और नंद महाराज जी को ब्रह्मा जी के वरदान से कृष्ण के प्रति ये वात्सल्य प्रेम हुआ, ये बदला। किंतु कहते हैं ये नंद और जसोदा कौन थे, इसका उन्होंने दिया है युक्ति से, ये नंद बाबा जो मूल माता पिता है नंद बाबा और जसोदा, उन्हीं का एक एक अंश है। क्यों? उन्होंने देखा ये जगत जीवों को साधन करने के लिए कुछ आश्रय चाहिए, अवलंबन चाहिए, इसलिए मैं ऐसी तपस्या करके और फिर तब कृष्ण का प्रेम ऐसा लाभ करूं। तो जगत के जीव लोग ऐसा समझ सकते हैं कि भगवान की आराधना करने से और भक्तों की कृपा करने से ऐसा होता है, इसलिए ब्रह्मा की उन्होंने आराधना की और फिर ब्रह्मा जी ने उनको वर दिया कि कृष्ण में, भगवान में आपको वात्सल्य प्रेम हो। कहते हैं कि जिस ब्रह्मा को अपने ही वात्सल्य नहीं, जो कि गोपियों की एक एक चरण रेणु की धूलि के से अभिषेक होने के लिए वहाँ के पत्थर बनना चाहते हैं, घास बनना चाहते हैं, कोई भी जन्म मिल जाए, ब्रज में ही नहीं, ब्रज में हमारा अधिकार नहीं है, भवे अत्र वा अन्यत्र तु वा चिरश्चम, कहीं भी, चिरश्चम माने पशु पक्षी का भी जन्म मिल जाए, कहीं जहाँ कहीं भी, भवत जनानां, आपके जो जन हैं उनकी सेवा, उनके मुख से हरि कथा का श्रवण का सुयोग मिल जाए, कहीं जहाँ कहीं भी हमारा जन्म हो जाए। फिर उनको ऐसा वात्सल्य भाव कहाँ से आएगा, तो जब उनको खुद ही नहीं है तो वो देंगे क्या, इसलिए कहते हैं जी नहीं, ब्रह्मा के इससे नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध वो थे, अपना अंश वहाँ के रूप में वो द्रोण और भरा बन करके आए और तपस्या किया। ब्रह्मा जी कुछ सर्वज्ञ हैं, इसलिए जान करके उनको श्रेय लेना था, उन्होंने ले लिया और कहा जैसा ऐसा तो होगा ही। इसके बाद में बोलो फिर नंद और जसोदा के रूप में वो आकर के मिल गए। जब नंद और जसोदा जी यहाँ पर इस जगत में तो बैठे और मिल करके रसासन जसोदा च महाभागा पपौ जस्यास्ता, सुखदेव गोस्वामी ने इस विषय को खोल करके नहीं बतलाया, यदि खोल करके बतलाएं तो यही होगा नित्य सिद्ध मुक्तों का ही भगवान के प्रति वैसा प्रेम होगा, दूसरे किसी को नहीं होगा, किंतु ऐसा नहीं, सबको हो सकता है, यदि ऐसा कोई साधन भजन आराधना करे तो हो सकता है, इसलिए उन्होंने खोल करके ऐसा नहीं बतलाया, बल्कि बतला दिया जो द्रोण और धारा ने ऐसी उपासना की, आराधना की, जिससे कि ब्रह्मा जी ने वर दिए और ऐसा। एक बात और कल कहा मैं, कोई चीज के लिए भगवान वरदान दे और कोई चीज के लिए उनका कोई प्रेमी भक्त यदि कोई वरदान दे तो भगवान अपने वर की अपेक्षा उस भक्त के वर को अधिक उत्तम बना करके रसास्वाद युक्त बना देते हैं ना? भगवान ने किसी को वर दिया और अर्जुन ने किसी को वर दिया तो किसका वर रहेगा? यदि राम ने कोई प्रतिज्ञा की और हनुमान जी ने प्रतिज्ञा की तो हनुमान की प्रतिज्ञा है। कोई भक्त है देखा जो रामचंद्र जी ने उसके कोई अपराध को देख करके एक आदमी को उन्होंने कहा जैसे उसको कल सवेरे हम जान से मार डालेंगे, राम ने प्रतिज्ञा की आतताई है या कोई ऐसा आदमी है धर्म के विरुद्ध काम किया, शूद्र नहीं नहीं वो नहीं। अब उसने रामचंद्र जी ने उसकी ढिठाई देख करके प्रतिज्ञा की ये इसको हम जरूर मारेंगे,
सवेरे का सूर्य उदय वो नहीं देखेगा,
और वो देखा जब कैसे बचे, अब तो कोई बचाने वाला है नहीं, नारद जी कहीं जा रहे थे उसका सूखा मुख देख करके पूछा जी भाई क्या बात हुई, क्यों तुम्हारा सूखा हुआ, क्या कल तो हमको रामचंद्र जी जरूर मारेंगे, उन्होंने प्रतिज्ञा की है, उनके चरण पकड़ लिए, बोला जी प्रभु आप हमारी रक्षा की, मैं नहीं रक्षा कर सकता, तब एक बात करो हनुमान जी को पकड़ जाकर के उनका पैर मत छोड़ना, अब बतलाना मत जी किस लिए पैर पकड़ा, उनसे प्रतिज्ञा करा लेना जो हम हमारी रक्षा करेंगे। जब कहते हैं हाँ रक्षा कर दूंगा तब फिर उनको बतला, बस वो चला गया, हनुमान जी को पकड़ लिया और उनके चरणों में गिर करके चरण पकड़ लिया और रोने लगा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा। अरे बोलो तो पैर तो छोड़ो, नहीं प्रभु ऐसा नहीं छोड़ूंगा, जब आप प्रतिज्ञा करेंगे जो आप हमारी रक्षा कर देंगे, हम केवल रक्षा के लिए हम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं तेरी रक्षा करूंगा, बतलाओ क्या बात है। तो रामचंद्र जी ने हमको प्रतिज्ञा की, कल सवेरे सूर्य उठने के पहले तू का तेरा पद करूंगा। तो बड़ा अच्छा, तुमको किसने बतलाया ये बात करने के लिए, किसने कहा? कोई जरूर बुद्धिमान आदमी तुमसे मिला है, तुम्हारा कोई गुरु है तो उन्होंने बतला दिया। जय नारद जी ने हमको ऐसा समझा। अच्छा वो ऐसे ही हैं, प्रभु में और सेवक में भी लड़ाई लगा देते हैं। जबकि सवेरा हुआ उन्हें तुम हमारे पीछे आकर के खड़ा हो जाए, जा मेरा था। बस वो राजमहल के पास ही आ गया और हनुमान जी वहीं पर खड़े हो गए, गदा ले लिया और वीरासन से बैठ गए। रामचंद्र धनुष बांध ले करके निकले जो उसे से मारूंगा, देखा जो हनुमान तो वीरासन से है और वो पीछे की तरफ में खड़ा है। आजाद वीरासन के रूप में और इस प्रकार से गदा में हाथ ले किससे युद्ध करने जा रहे, तो प्रभु इसको जो मारेगा उसको हम पहले मैं जैसा देख लूंगा फिर उसके बाद इसको उस पर मैं कोई हाथ छोड़ सकता, मैंने प्रतिज्ञा की है कि आज तेरी रक्षा करूंगा जैसे। तो प्रभु की प्रतिज्ञा रुक गई और उन्होंने हनुमान की प्रतिज्ञा की। ये भगवान का भक्त वात्सल्य और समस्त गुणों में सर्वोत्तम गुण है, इसलिए नारद जी जबकि ब्रह्मा जी ने इनको वर दिया और अपने आप स्वयं उन्होंने देवकी वसुदेव को वर दिए, दोनों में